Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Thank you Prabhupada ki
Jai
वेद भक्त वृंद की
जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये तो आज भी इस सायंकाल में इस वृंदावन हाली वृंदावन भवन में जो आप लोग श्रद्धालु भगवान की जन्मलीला सुनने के लिए उपस्थित हैं सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हम आलोचना कर रहे थे कि किस प्रकार महाराज देवक के छोटी कन्या असमर्थ रूपवती गुणवती सी देवकी माता का विवाह के लिए तैयारी चल रहा है। एक बार जदुराज सभा में राजभवन में आचार्य गर्ग कहीं से आकर पहुंचे तो राजभवन में उनको विशेष सम्मान किया गया आतिथ्य किया गया तो स्वयं महाराज बड़े आग्रह से उनको प्रार्थना किए कि उनको आश्रय देने के लिए और अपना पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए। तो आचार्य गर्ग ने कुछ समय नेत्र मुद्रित करके ध्यानस्थ रहे और स्वीकृति दे दिए। क्यों स्वीकृति दिए? क्योंकि बहुत बड़ा लोभ था। वो त्रिकालदर्शी थे, भगवान शंकर के सीधा शिष्य थे। उनको पता चल गया इस स्कूल में निखिल भुवन नायक भी आएंगे, उनका भी उनकी गणना आदि जातक क्रिया आदि करना पड़ेगा उनको। इसी लोभ से उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। तो तुरंत ही उनको मथुरा में उनके आवास आदि का व्यवस्था हुआ, उनको ससम्मान पुरोहित पद में अभिषिक्त किया गया। तो कुछ दिन के बाद जब देवकी जी के लिए वर चुनने का बात आया तो सभी ने बोले कि आचार्य गर्ग से परामर्श किया जाए, वो बड़े समर्थ पुरुष है, वो उनके लिए उचित वर ढूंढेंगे। तो सभी ससम्मान से आचार्य गर्ग को बोले कि पूरे त्रिभुवन में आप ढूंढ कर लाए देवकी जी की, हम बहुत उपयुक्त वर ढूंढना चाहते हैं। यद्यपि कंस का पहले इच्छा नहीं था और प्रतिवाद करना उनके स्वभाव ही नहीं था, लेकिन देवकी के प्रति अतिशय स्नेह के कारण पिता के बात में कुछ प्रतिवाद नहीं किया। तो गर्ग ने महावैरागी ने स्वीकार कर लिए और चल पड़े ढूंढने के लिए। जितनी जल्दी आने का आशा किया जाता था उससे कई जल्दी आ गई वापस। आके राज साहब ने अपना रिपोर्ट दिए, बोले मैंने लगभग पृथ्वी तल पर जितने सुर असुर राजपुरुष हैं सबको सबके कुंडली पर विचार कर लिया, देख लिया सबको, तो उनको कौन सा कहीं जाना था, बैठे बैठे सब देख लिए। वो तो महाशक्तिशाली थे। बोले कि मैं देख लिया कि त्रिभुवन में माता देवकी के उपयुक्त वर वसुदेव जी से कोई नहीं और अधिक, केवल वसुदेव ही एकमात्र उनके लिए उपयुक्त वर मालूम पड़ते हैं। जैसे इस बात को घोषणा की उन्होंने राजसभा में, कर्ण से तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर के बोला मैं पहले ही बोल रहा था, मैं पहले ही बोल रहा था, बिचारी बड़े भोली भाली है, सबसे छोटी है, उनको आपने अभाव आपने कष्ट की बात तो दूसरे को कहने ही नहीं आती है, कहाँ दूर भेज देते उसको, परेशानी होती। मैं तो शुरू से बोल रहा था उनको वसुदेव जी को देना ही है, मेरे बात मान नहीं रहे थे। अब जब आचार्य गर्ग ने कहे तो बिल्कुल उन्होंने उठ करके बड़े उत्साह से आकर बोला आचार्य जी आज ही दिन निर्णय कर दिया जाए। महाराज उग्रसेन से हंसकर के पुत्र सुरसेन जी से तो बात करना ही होगा ना, और वसुदेव जी तो अभी के छोटे बालक तो नहीं है, उनसे भी आज्ञा लेना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये बात को सुनकर कंस ठठा कर हंसने लगा, अपने स्वभावगत अट्टहास करके बोलने लगा, महाराज आप भी बड़े अद्भुत हैं, अभी तक तो आप देखे भी हैं सुने भी हैं कि पितामह सुरसेन कभी कोई प्रार्थना को सोचे को विचार किए को ना, तो उनके मुंह से आता ही नहीं, एवं मुस्तु करना आता है, केवल स्वीकृति देना आशीर्वाद देना तो ये प्रतिमूर्ति है उनका, उनको पूछना ही क्या है। अगर आप चाहते हो तो आप नियम पालन करें, आप जाए पूछे उनको, लेकिन मैं आचार्य चरण को प्रार्थना करता हूं अगर वो मुझे आदेश करें तिथि निर्णय करने के लिए, मैं आज ही अभी जाता हूं वसुदेव जी के वहां, उनसे अनुमति ले आऊंगा। तो इतनी शीघ्रता था कंस के द्वारा। तो आचार्य गर्ग जब भी चाहते थे थोड़ा उत्तम तिथि ढूंढने के लिए, लेकिन कंस को इतने उतावली देखते हुए और उनको उनके स्वभाव नहीं है विलंब सहन करना, अपेक्षा करना उसका आता नहीं, जो होना इमीडिएट करना है। तो आचार्य जी जानते थे इस क्रूर असुर के स्वभाव को, ओ ना नहीं कर ना करने से मानेगा नहीं, तो हाँ करना ही उचित था। बोले ठीक है युवराज आप जा सकते हैं अनुमति लेने के लिए वसुदेव जी से। तो आपने सबसे लाडली सबसे छोटी आपने पुत्री जैसे बहन देवकी के विवाह के लिए सबसे उत्साह से भरा था कंस, तो उन्होंने ही दूसरे दिन सुबह अपने रयाल कार निकाल कर चल पड़ा, जाके वसुदेव जी का घर के सामने पार किया, उतर करके अंदर प्रवेश किया वसुदेव के भवन में। वसुदेव जी स्वयं आगे आकर के स्वागत किए, युवराज स्वयं पधारे, क्या बात है। कंस ने हाथ फैला करके उनसे आलिंगन मुद्रा में मिला, बड़े साहस से स्वागत किए। तो वसुदेव जी बोले कुमार जब आए हैं तो अंतपुर में पधारे, अब मैं साथ जाने को आप चाहते हैं लेकिन शायद आपके अंतपुर में आपकी बहन शुभ हैं और वो अपने भाई से कुछ मिलना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे, मैं साथ में रहने से शायद कुछ कदाचित संकोच करें, तो इसलिए आप ही पधारे, ये तो आपका ही घर है। इस बात सुनकर के युवराज कंस ने बोले नहीं 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 मैं तो आपके अंतपुर में कुछ दिन के बाद आऊंगा, जब मेरा और एक बहन को यहां पर रहने का प्रबंध करके साथ में लेकर आऊंगा तब मैं आऊंगा। तो मैं तो केवल आपसे अनुमति लेने आया हूं, आप अनुमति दे रहे हैं ना। ये बात सुनकर के हंसते हुए वसुदेव जी ने बोले, युवराज ये अंतपुर तो मेरा नहीं है, अंतपुर के अधिकारिणी रहने वाली तो आपके सारे बहन है, और उनके भाई किसको लाकर वहां बसाए, उनमें मेरा क्या अधिकार है, मैं कैसे रोक सकता हूं। अगर आपको अधिकार लेना अनुमति लेना चाहते तो उनसे लीजिए, आपको उनसे जाकर बात करिए, उनसे अनुमति लीजिए, मैं कौन हूं अनुमति देने वाला। तो कंस ने बात को स्पष्ट करना चाहते थे तो उन्हें तुरंत बोल पड़े, देखो मेरा सबसे छोटी बहन देवकी है, सबको बहुत प्रिय है, सभी उनको बच्चे के समान जानते हैं, और वो अपने बड़े बहन के साथ रहेगा रहेगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगा, सभी प्रसन्न होंगे, तो मैं तो उन्हीं के लिए ही प्रबंध करने के लिए आया था आपसे अनुमति लेने के लिए, आप अनुमति दे रहे हैं ना, और आप दूसरे से पूछने का आवश्यकता नहीं। इस बात को सुन करके वसुदेव कुमार ने थोड़ा गंभीर होकर बोले, युवराज आप तो जानते ही हो इस मामले में मैं तो स्वाधीन नहीं हूं, अगर मेरा चलती, अगर मेरा रुचि के अनुसार बात होता तो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समान एक पत्नी व्रता ही होता, लेकिन क्या करूं, मैं तो अपने पितृचरण के अज्ञानवर्ती हूं, और उनको अगर किसी की कन्या को अपने पुत्रवधु बनाने का स्वीकृति दे देना है, बनाना है, तो पास कर दे, स्वीकार कर दे, हाँ मेरा पुत्रवधु बन जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो स्वीकार करना ही है, उन्होंने सैंक्शन कर देते। ऐसे करके अभी 17 हो चुका है, नंबर 17 चल रहा है अभी, आपकी इच्छा। तो इस बात को सुनकर के युवराज कंस हंसने लगे, बोले तब तो फिर मेरी छोटी बहन के लिए तो निश्चित ही हो गया, क्योंकि आप जब ऐसे कहते हैं आपके पिताजी के बात, तो पिताजी की तो मैं अच्छे तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनको तो कोई प्रार्थना को अस्वीकार करना आता ही नहीं, कोई जाए ठीक है ठीक है स्वीकार कर लेंगे, तो आपको तो स्वीकार करना ही है। तो इस प्रकार दोनों दोनों को गले दोबारा मिले आलिंगन मुद्रा में, बहुत प्रसन्नचित होकर के युवराज कंस ने प्रत्यावर्तन के लिए निकला, साथ में कुछ भेंट उपहार लेकर आया था। ये देखिए हमारा चिराचरित प्रथा है, आजकल सब एडवांस सोसाइटी ये सब भूल गया, जो सब वर्णाश्रम विभाग के जो आदब कायदा समाज की जो नीति था, कोई भाई अगर अपने बहन का घर में जाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यहाँ लेना नहीं वहाँ कुछ देना चाहिए। तो कंस भी ये बात जानता था, राक्षस होने पर भी वो कुछ भेंट उपहार लेकर गया था, तो ला करके दिया, देकर वापस आ रहा था, वापस आ रहा था तो वसुदेव ने बोले, युवराज ये सामग्री, बोले तो ये गृह तो मेरा बहनों का है और उनके भाई का ये सत्व होता है, अधिकार होता है, वो कुछ भी समझ लाकर यहां रख जाए, आपका अधिकार केवल स्वीकार करने में है, निषेध करने में नहीं है, चुपचाप रख लीजिए। तो कंस ने हंस करके ऐसा कह करके विदा लिया। लगभग उसी दिन से वसुदेव जी का अंतपुर में माता देवकी के लिए एक कक्ष निश्चित हो गया, मानो एक घर उनके लिए रेडी हो गया कि उनको आना ही है, लगभग डिसाइडेड हो गया। और इस बात को सुन करके जान करके वसुदेव जी के अंतपुर में जितने ही सदस्य थे, सारे तो उनके बहन तो थे ही मोस्टली, सभी ने सउल्लास उस कक्ष को सजाने में लग गई, व्यवस्था करने में लग गई कि देवकी आएगी, सभी का मुंह पर एक ही बात था, एक ही स्वर था, सभी ने कहते थे बहुत उत्तम निर्णय लिए, बहुत अच्छा डिसाइड किए पिताजी ने और महाराज ने, बहुत उत्तम निर्णय किए। बिचारी देवकी बहुत भोली भाली है, गूंगी जैसी है, अपनी अभाव कष्ट किसी दूसरे को बोल नहीं सकती। उस छुई मुई सी के लिए तो पल पल में कोई सहायक आवश्यकता है, कोई उनको सहायता करे, अकेली कैसे रहती। जो अपने स्वजन परिजन नहीं है उनसे दूर रह करके बड़े कष्ट भोगती, हम लोग के पास रहेगी तो हम उसको हमेशा सहायता करके रहेगी, बेचारी सुखी रहेगी। इस विचार में बहुत सुख से गृह सज्जा करने लगे थे। और दूसरी ओर महाराज उग्रसेन अपने अग्रज देवक जी को साथ में लेकर के नीति के अनुसार उन्होंने सुरसेन जी का सदन में पधारे। उसमें परमिशन लेना है ना पिताजी से, नारियल लेकर गए थे स्वीकारोक्ति देने के लिए। जाके पहुंचे, प्रणाम किए, पितामह प्रणाम है, प्रणाम। सुरसेन जी ने मुख उठाकर देखे, वो तो हमेशा अपने धुन में लीन रहते हैं, उठाकर देखे कि महाराज प्रणाम है, कैसे पधारे। नहीं, हम एक प्रार्थना करने आए हैं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए और एक पुत्र बुद्धि स्वीकार कर लें। अच्छा ठीक है महाराज, तुरंत ये भी नहीं पूछे कि भाई ये जो पुत्र बुद्धि होगा उसका नाम क्या होगा, गोत्र को कुछ भी नहीं पूछे, सीधा स्वीकार। ठीक है महाराज, बिना पूछे पत्नी का नाम परिचय बिना पूछे भी स्वीकार कर लिए। लेकिन पितामही मारिसा बैठी हुई थी, उन्होंने पूछ दी, महाराज किस कन्या के लिए प्रस्ताव है? तो सुरसेन जी ने तुरंत टोके उनके पत्नी को, क्या महाराज स्वयं आए हैं, वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनके लिए फिर हमको कन्या के कुल परिचय पूछना है? पगली क्या सोचती है तूने? आप क्या सोचती हो कि वसुदेव तुम्हारा ही पुत्र है? ये तो उनका भी पुत्र है, महाराज का भी पुत्र तो है ना, वो उनका विवाह करना चाहते हैं, आपको उचित पुत्रवधु तो मिलेगी, आपकी चिंता की पड़ी है, हमको स्वीकार करना है। तो महाराज ने, उग्रसेन ने अपने तरफ से बोले, नहीं हम तो पुत्री देवकी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। ओ, देवकी का नाम सुनते ही पितामही का तो अतिशय स्नेह पात्र स्नेह था देवकी के प्रति, सभी पूरा मथुरा मंडल में सभी उनको बड़े पसंद करते थे, उनके नाम सुनते ही मानो मग्न हो गई, कितने उत्तम प्रस्ताव है, कितने उत्तम प्रस्ताव है। तो प्रार्थना स्वीकार है? सुरसेन जी ने उठ करके हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप बार बार हमको प्रार्थना क्यों करते हैं, ये कोई प्रार्थना करने के योग्य थोड़ी है, वसुदेव आपका ही है, हम सभी आपका ही है, आप राजा है, आप जो चाहे सो करें, प्रार्थना करने का आदेश दें, प्रार्थना क्या करें, आप सात बेटी दिए थे और एक देंगे, और किसने देंगे, दे सकते हैं, आपको कोई रोक टोक थोड़ी है। तो सउल्लास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, उन्होंने वापस गए। अब जाकर के लगभग आचार्य गर्ग ने तो डेट डिसाइड हो चुका था, अभी जब डेट डिसाइड हो गया, प्रस्ताव रेडी हो गया, अब पहले जैसा तो ये नहीं कि निर्बंधाग्रह सब मानस सब हो ही गया और क्या है, अभी केवल शादी करना ही है। तो शादी करने के लिए जो तैयारी सब लग गए, इन्विटेशन कार्ड छापना, मेनू भेनू है ना, नहीं डेकोरेशन ये सब करना ही है। तो इस बार विवाह के दायित्व युवराज कर्ण से पूरा पूरे अपने हाथ में ले लिए, बोले मैं ही पूरा संभालूंगा। ऐसा नहीं कि पूरे उग्रसेन के भी पांच कन्याएं थी और उनके भाई देवक जी के भी सात कन्याएं थी, देवकी जी को छोड़ करके बाकी जितने सारे कन्याएं लगभग 11 अभी तक सभी का विवाह लगभग सुरसन कुल में किए हैं, मथुरा में कोई बाहर नहीं किए थे, और किसी भी विवाह ने कोई कृपणता नहीं किए थे, हाथ खोल करके खर्चा किए थे, बड़े धूमधाम से किए थे। और लेकिन कितने भी अच्छा से फेस्टिवल करो, बाद में बैठ करके विचार करने से लगता है कि कुछ तो त्रुटि रह गया, ये गड़बड़ी हो गया, ये नहीं होना था, अगले बार को देखेंगे ऐसा जैसे ना हो ध्यान में रखेंगे, नोट करके देख। तो हर विवाह के उत्सव में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गया था, तो इसलिए 11 बार विवाह करने के बाद इसी बार जो 12th मैरिज सेरेमनी होगा, इसलिए युवराज कंस बोले आप सब बूढ़े हो गए, कई बार ये सब हुआ था पिछले मंथ, आप सब ये हुआ, इसलिए इस बार बिल्कुल किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, पूर्ण सफलता के साथ विवाह होना चाहिए। तो इसलिए आप केवल देखते रहिए, जो मैं चेक भेजता हूँ सैंक्शन कीजिए, उसको साइन कीजिए, बाकी कार्यक्रम मैं देखता हूँ, बजट में बनाता हूँ, मैं सारे संभालूंगा, टोटल मैनेजिंग हेड मैनेजर उन्होंने बना बन गए। ओ बोले ठीक है। सचमुच कंस ने जब देवकी माता छोटी बेटी थी तभी से उनके प्रति अतिशय वात्सल्य रखती थी, रखता था वो, तो आपने पुत्री जैसा मानता था, तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया मथुरे नगर में, मैं मेरे बहन पुत्री जैसे बहन देवकी का शादी ऐसे करवाऊंगा कि इतिहास में स्वर्णा क्यों गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाए ऐसे तभी शायद वो था नहीं रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी बोले इतिहास इतिहास में है, भागवत तो इतिहास है ना, उसमें लिखा गया किस प्रकार हुआ, इतिहास में लिखित हुआ, बाकी 11 विवाह में लिखा नहीं, उनके लिखा गया, बोले ऐसे विवाह करूंगा अनुष्ठान। तो अनुष्ठान करने के लिए पहले कोई अपने अच्छे मित्र कौन एक डिपार्टमेंट देखेगा, वो क्या देखेगा, वो बोला आप सब चुप बैठिए मैं सब संभालता हूँ। संभालने के लिए आपने सारे जो अपने पार्टी के लोगों को बुलाया, पार्टी के लोगों को जानते हैं ना, अरे दिग्विजय करने गया था, सारे तो आपने अनुचर बनाकर लाया था ना, सारे असुर टेररिस्ट सारे उनको बुलाया अरे एक तो स्वयं बड़ा बदमाश था, कोई उनका आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता पूरा मथुरा, और उनमें सारे जूट बना लिया, गुट बना लिया, बाप रे बाप, जो सुनेंगे माइक वाला डेकोरेटर वाला सार 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 कोई बचा नहीं चाहिए, हम जाएंगे 2 दिन पहले से जाएंगे, सारे मरेंगे उनका बात नहीं मन से, सारे जूट इकट्ठे हुए, एक ही था इतने हाल कर रहा था, पूरे ग्रुप ग्रुप बैठे अब तो केवल बोलना ही था, ये करना है पहले से ऐसा, अब बार्गेनिंग का प्रश्न ही नहीं, पूरे उनके डिपार्टमेंट लगा दिया, सर बदमाश लाके लगा दिया, और इतने भारी नगर सज्जा किया। सबसे ज्यादा उत्साहित कंस था, यद्यपि बाकी सभी ने थे ही, कंस पूरा उत्साह से भर के था, हाई बजट पास करके पूरे सिटी को डेकोरेट किया, हर रास्ते को भी दोनों तरफ से त्वरण बांधा, गेट बनाया, सिंचाई किया, सजाई किया, सफाई किया, क्या क्या नहीं किया, इतने सुंदर भवन के सामने सब कलश आदि, केला के स्तंभ और सघट पूर्ण कुंभ कलश से सब प्रकार के रखा, बिल्कुल विविध प्रकार जो सब बड़े बड़े सजावट वाले सबको ऑर्डर दिया कि सब सजाओ, मना करने के लिए किसी का साहस ही नहीं था। और फीस्ट के लिए तो कहना ही क्या है, उनका आइटम तो स्पेशल ही था, उनका मेनू वो जानता था, इस मेनू सबको पसंद नहीं है, पिताजी अगर ऐसे अलग अलग गुण के हैं, उनका अलग अलग मेनू, तो कई प्रकार के मेनू था, अलग अलग प्रसाद हल भी था, अलग अलग प्रकार के सर्विस भी हुआ करता था, विभिन्न प्रकार में इस प्रकार के विवाह की किया। और तो और ऐसे वर्णन आता है कि स्वयं होस्ट बना, क्योंकि बारात आएगा ना, बेटी की शादी है तो बारात तो आएंगे, तो वसुदेव जी के वहां से जो बारात आया उनको युवराज कंस पर्सनली स्वयं रिसीव किया, रिसेप्शन में स्वयं खड़ा था, ऐसे रिसेप्शन किया जाके नम्रता की मूर्ति बन गया, एक एक करके सबको रिसीव किया, सबके चरण धोया, सबको नए वस्त्र में पहनाया, सबको गिफ्ट दिया नया ड्रेस, जितने आए थे। और क्या उनका व्यवस्था किया बारात लोगों के रहना खाने का, तो क्या बताएं। इससे वस्त्र परिपाटी भेंट, जितने भी लोग आए थे गेस्ट, जो भी स्वजन परिजन आमंत्रित और भी जो सब आए थे, और देख दर्शक वृंदा आसपास के लोग, जो सभी को गिफ्ट दिया विशेष उपहार, इतने खुल करके खर्चा किया। तो सभी ने देखे कि इस बार मथुरा नगर के जो विवाह, ये जो व्यवस्था, सबका कल्पना से परे है। सब कई वर्षों तक चर्चा चल पड़ा, यही सा शादी हुआ था, यही सा फेस्टिवल हुआ था, यही सा उत्सव किया। और उत्सव खान पान तो था ही, पूरे रात भर खूब चला, अलग अलग लोगों के प्रकार के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हुआ था, पार्टी हुआ था सब। अब दूसरे दिन दहेज की बारी आया विदाई के समय। वो तो कंस ने जब से विवाह तय हो गया था, विवाह तय होने से पहले से ही वो डिसाइड किया था, डिसाइड करके अपनी दिग्विजय से प्राप्त किया हुआ जितने सुदुर्लभ वस्तुएं सब, कई भारी आइटम सब लेकर आया था, बढ़िया बढ़िया आइटम सारे को अलग करके ऑलरेडी सुरक्षित रख दिया था कि दहेज देने के लिए, देवकी के लिए सब रिजर्व्ड है, रखा था। और केवल एक उबलया पेड़ हाथी और कुछ उदंड अश्व, उनको ये सुझा कि वसुदेव बड़े शांत प्रकृति के, उनके काम के नहीं है, नहीं तो प्राय बाकी जितने जहां से जीत करके लाए था भेंट सब स्वीकार गिफ्ट लाया था, सारे को सारे शादी होने से कुछ दिन पहले से कई ट्रक लोड माल ऑलरेडी भेज दिया था। हाँ ट्रक था नहीं, मतलब दूसरे गाड़ी में भेजा था उन्होंने, ऑलरेडी पहुंचा दिया था उन्हें। और बाकी कितने समन दिया, कितने क्या क्या दिया, ये तो हाथी घोड़ो दास दासी का गणना मात्र भागवत में बता दिया, संख्या सुना दिया गया, इतने इतने नंबर में दिया गया, लेकिन इतने भारी संख्या में दहेज में दिया, लोग तो कहते हैं क्या मथुरा राज को साज संपूर्ण दे देगा ना क्या, इतने भारी दिया, इतने स्नेह था, इतने ममता था। और स्वयं कर रहा है राजा, देख रहे हैं कि उनका खुश में खुश हो जाने का। तो इतने बड़ी भारी आडंबर में, भव्य आडंबर से विवाह उत्सव हुआ, लेन देन हुआ, पूरे नगर के लोग मानो खूब प्रसन्न थे, सब नर नारी जितने गेस्ट आए थे, जितने बंधु मित्र परिजन सब आए थे, सब इतने प्रसन्न थे, वाह जो भी हो किया तो फेस्टिवल मानना पड़ेगा। लेकिन जो विवाह उत्सव शुरू हुआ सजावट हो करके, उनका स्वभाव तो क्रूर है ही, जो भी हो आपने बहन के पति स्नेह के कारण हो कि कोई भी हो, उनके देवकी को देख करके उनके थोड़ी से भी छोटी सी भी कष्ट उनको लगता था, सहन नहीं करता था कंस। जिस दिन विवाह होगा पहले दिन शाम को ही कार्यक्रम शुरू हो गया, पुजारी लोग आए अपना सब वेदी बनाना और सबको ना पूजा पाठ शुरू कर दिए, फास्टिंग रहना पड़ता मालूम है ना, करते ना फास्टिंग, जो वर और वधु होंगे दोनों को उपवास करना पड़ता ना जब तक पाणी ग्रहण तक, यज्ञ होगा तब तक उपवास रहना पड़ेगा, तो खाए नहीं थे। तो सुबह जब पूरे सानाई बज रहा था, सब बैठे थे, कार्यक्रम शुरू हुआ, वेदी के ऊपर मंत्र उच्चारण हो रहा था, कंस आकर अपने सीट में बैठ गया, देखा देवकी जी बुलाए, देख करके तुरंत उनको लगा, अरे ये तो दुबली पतली हो गई। हाँ हाँ चो बोले, तो काल से तो उपवास है, अब तो उपवास की, तुरंत वहीं बैठे बैठे ऑर्डर दिया, आचार्य जी कृपा करके ध्यान दें, मेरे छोटी सी बहन ही बच्ची है, अभी उसे उपवास करने का अभ्यास नहीं है, वसुदेव जी हैं कई बार शादी किए, 11 बार उनको चलेगा, 17 बार कर चुके हैं, उनका प्रैक्टिस हो चुका है, वो कर लेंगे, उनके लिए तो पहली बार है, अब कल शाम से खाई नहीं, आप विलंब मत करें, यथाशीघ्र पाणी ग्रहण के काम करें, अब पूर्वाह्न तक हो जाना चाहिए। यद्यपि बैठ करके नम्र भाव से बोल रहा था, लेकिन उनका नम्रता से आदेश की कठोरता और स्वर बिल्कुल झलक रहा था। और आचार्य जी ने देख करके नहीं चाहते थे जान बोझ करके थोड़ा लेट करते थे कि उत्तम तिथि की ओर थे, देख रहे थे कि इस तिथि में करूं तो शुभ होगा, शुभ लग्न शुभ समय शुभ तिथि को देख रहे थे, लेकिन इतनी प्रेशराइज किया गया उनको कि पूर्वाह्न से पहले हो जाना चाहिए, वो ज्यादा व्रत नहीं रख सकती है, जल्दी समापन कीजिए। जी युवराज करता हूं, और बड़े अन्य मनस्क होकर के न चाहते हुए जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। कई दिन बाद में भी मथुरा के जदुकुल के वृद्धाएं एक कहती सुनी गई कि कंस की उतावली के कारण, हड़बड़ी के कारण आचार्य गर्ग ने सही लग्न सही तिथि से विवाह नहीं कर पाए, इसी कारण से बहुत बड़ा अघटन हो गया, अशुभ हो गया, नहीं तो आचार्य गर्ग के हाथ से अनुष्ठान हो ऐसे नहीं हो सकता था, उनको करने नहीं दिया दुष्ट ने। इस बात तो कोई ध्यान नहीं दिया कि गर्गाचार्य ने कितने दुखी हो गए। उन्होंने बोले, हाँ युवराज, जहां आता है वहां इति भी है, दोनों साथ में रहेंगे, नियति का विधान को कौन रोक सकता है। मैं आचार्य गर्ग भले कितने त्रिकालदर्शी हूं, सब देख जान करके लग्न करण कारण और सब आगत भविष्य सब जान कर भी मैं चाहता हूं कि शुभ करूं, शुभ घटन हो, सब प्रसुभ, लेकिन क्या करूं, नियति का जो विधि का विधान है उसको कौन रख सकता है। इस तुच्छ आचार्य सब जानकर भी करके आ सकता है, अभी तक रोक नहीं सकता उसको, जो होना ही है वो तो होगा ही, वही जो विधि ईश्वर की ही इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। जो भी कुछ संसार में हुआ है, हो रहा है और आगे होगा, भले कोई कुछ कहे, कोई कारण हो, लेकिन सब कुछ केवल एकमात्र सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की इच्छा के ऊपर ही चल रहा है। इसलिए आचार्य गण कहते हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमार इच्छाए विश्व सृजन संहार, तुमार इच्छाए विश्व सृजन संहार, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत ब्रह्मा न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवेर जनम मरण, तव इच्छा मते समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, समृद्धि निपात दुख सुख मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे,
तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तुमि त रक्षक आर पालक आमार तुमि त रक्षक आर पालक आमार तुमार चरण बिना आशा नाही आर तुमार चरण बिना निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया निज बल निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुमार इच्छाए अछि निर्भर करिया तुमार इच्छाए अछि भकति विनोदति दिन अकिंचन भकति विनोद तुमार इच्छाए तार जीवन मरण
ठाकुर भक्त विनोद कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के इच्छा से हो रहा है, उन्हीं के इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उन्हीं के इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं के इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, उन्हीं के इच्छा के अनुसार ये माया देवी ये कारागार ये भव संसार को रचा है, उन्हीं के इच्छा के अनुसार कोई जीव का समृद्धि निपात दुख सुख सभी प्रकार के संगठन उसी के इच्छा के अनुसार होता है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रत्येक जीव का जन्म मृत्यु के निर्धारण होता है, सुख समृद्धि सब उनके इच्छा के अनुसार। झूठ मूठ में मायाबद्ध जीव सोचता है कि मैं करता हूं, वो आशा करता है कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी इच्छा के संक्षण के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर भक्ति विनोद अंत में कहते हैं इसलिए मेरा आपनी चेष्टा बल बुद्धि सामर्थ्य के पर 1% भी भरोसा नहीं है कि कुछ उसमें हो पाएगा, फिर क्या भरोसा है, मैं आपकी कृपा के ऊपर भरोसा करके बैठा हूं, अगर आप कृपा करें तो कुछ हो पाए, नहीं तो नहीं। यही वास्तविक सिद्धांत ही है। तो आचार्य गर्ग इस सिद्धांत को जानते थे, इसलिए बोलते कि मैं क्या करूं, मैं कितने भी प्रयास करता हूं शुभ लग्न शुभ तिथि शुभ बेला में करूं काम ताकि सफल हो शुभ हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, नियति का विधान कुछ और है, तू इधर बैठे बैठे कहां से आगे मुझे प्रेशराइज कर बोलते, अब भी करो इसी समय के अंदर करना होगा, अरे कैसे भी बड़ा नहीं है अमृत बड़ा नहीं है कैसे करो, लेकिन अब जो क्या करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, युवराज के आदेश है, वो इंचार्ज है फेस्टिवल के, फेस्टिवल कमिटी के चेयरमैन है, तो उसको मानना पड़ेगा। तो मान करके उनको करना पड़ा, लेकिन अन्य मनस्क रहे तभी से बोले कि कुछ तो गड़बड़ी होगा, ये जो समय है समय खराब चल रहा है, इसी समय में कार्य होने से उसका परिणाम भी कुछ और होगा, लेकिन कौन इसको ध्यान देता है, खूब खान पान मोछब मोछब सब मशगूल है, कोई ध्यान देते नहीं, बेचारे आचार्य किस अन्य मनस्क है, कितने चिंतित है, कोई चिंता की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है, और कौन सा तो अपनी मस्ती में है, खूब व्यवस्था सब देख रहा है, सब ने खूब खुश हैं, वो इतने सुख के इतने सुख समृद्धि इतने उल्लास पूरे मथुरा नगरी में उस रात उस सुबह के दिन से सभी ने इतने प्रशंसा, इतने उत्साह, इतने उल्लास में, इतने आनंद से रहे खान पान से, सब भूल गए। नाच गाना बजना इतने प्रकार से व्यवस्था हुआ कि किसी को पूरे मथुरा प्रदेश में पता नहीं चला कि आज की रात्रि आपके मथुरा के लिए शेष उल्लासमय रात्रि हो जाएगा, काल को नहीं। ये रात्रि अंतिम रात्रि है, किसको पता था ये काल क्या होगा, इसी को बताते हैं काल क्या होगा। आचार्य केवल जानते थे, बड़ा चिंता में रह गए, बाकी सब तो मस्ती में थे। बड़े धूमधाम से उत्सव पूरा हुआ। दूसरे दिन सुबह ही और सुरेशन जी ने बोले मुझे पूजा आदि करना है। वो प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विदा लेके चल गए। उनको तो कुछ पड़ी नहीं, कोई शादी हो ना हो, 10-20 शादी कर लिए, वो क्या एक और होता है, वो अपने चल पड़े। तो पूर्वाह्न से पहले नव दंपति वर वधु को विदाई उत्सव था उस दिन। और जैसे मैं दहेज का बताया तो खूब पहले से भेज दिया था, अभी सुबह से चल ही रहा है गणना, ये देना ये देना वो देना। और विवाह के दूसरे दिन जब विदा होने का दिन होता है, उस दिन वर और वधु को तो मानो हर पार्वती माना जाता है, बड़े पूज्य मानते, सभी उनको पूछते हैं, वंदापना करते हैं, आरती उतारते हैं, उनको भेंट देते हैं, उनको मंगल गान कुनाकर सुनते हैं, सब मंगल वचन कहते हैं। और बिल्कुल अपने जो शुभ वस्त्र में सज करके रहते ना, सब बांध करके क्या बोलते हैं वो, सब मंगल सूत्र, मंगल पोशाक, सब ये सब से पहन करके रहते हैं। तो इसलिए उनको देव देवी माना जाता है उस समय में। तो विदाय उत्सव समय आया, नीति के अनुसार घर परिवार के जो स्त्रियां हैं उनको थोड़ा रोना पड़ेगा, जो नहीं जानते हैं थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करके रोएंगे, रोएंगे धोएंगे कुछ करेंगे। तो ज्येष्ठ परिवार से जो वयोवृद्ध हैं, अग्रस देवक जी महाराज उग्रसेन, वो आकर के नवदंपति को आशीर्वाद दिए। और कंस तो बिल्कुल व्यस्त था सब अरेंजमेंट करने में, कैसे जाएंगे विदा होंगे। तो बाई ऑर्डर कंस ने किया था एक स्पेशल कार बना हुआ था, रथ, कार मतलब रथ, स्वर्णिमी रथ, गोल्डन रथ, इतने बढ़िया स्वर्ण खचित सजित बिल्कुल डेकोरेटेड रथ रेडी आकर के गेट पर, और विभिन्न प्रकार से फूल और अलंकार से सुसज्जित चार सफेद काले कान वाले श्यामकरण वाली घोड़े, बिल्कुल चुने हुए अश्व जोता हुआ था, सारथी बिल्कुल अपने पक्का यूनिफॉर्म में सुसज्जित होकर के और बिल्कुल रेडी था चलाने के लिए, एक्सपर्ट सारथी था। और विदाई उत्सव देखने के लिए तो मानो मथुरा प्रदेश की जितने आवाल वृद्ध वनिता सब राजभवन के अंदर, सभी नहीं आ पाएंगे, राजभवन के, राजभवन के लोकवाग लाखों हैं, और पूरे देश के पूरे रास्ता, राज रास्ता के अंदर जो विदाई उत्सव जाएगा प्रोसेशन, दोनों तरफ से खचाखच भीड़, कोई जगह नहीं, सब दोनों तरफ में बारन्ना बिन्ना सब भीड़ है, देखना चाहते हैं सबको वर वधु को। समय आया पूर्वाह्न तक, और गाड़ी तो रेडी था ही, तो धीरे धीरे उनको रोने धोने के जैसे होता ना पारंपरिक रीति है, रीति के अनुसार सारे स्त्रियां ने उनको घेर करके मंगल गान करते हुए, ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन करते हैं, कोई अक्षत आदि फेंकते हैं ना, इसे भी ऐसे दुर्बा अक्षत फेंकते हैं, इस प्रकार करते करते और शंख वाद्य हुलू वाद्य उनके साथ उनको लेकर के आए, वो गाड़ी के पास लाए। सुसज्जित था रथ तो पहले से ही, तो रथ में आरोहण करा गया नव दंपति को। वर वधु ने, वसुदेव जी ने बिल्कुल अपने जो एक मुकुट बांधते रहते ना थर्माकुल पे बना हुआ, नहीं तभी जमाने तो थर्माकुल नहीं सोने का पहने होंगे, आजकल बनाते हैं इसे सोने के मुकुट, और भी जो उनका सब मंगल वस्त्र से पहने हुए थे, माँ देवी की बिल्कुल सुसज्जित पाट वस्त्र, सोने के अलंकार तो आभूषित पूरा, साड़ी भी जहां जहां से सोने की अलंकार सुझुलुहा था, और बिल्कुल अवगुंठन मुद्रा में थी। और उनके पता नहीं केस आदि से कितने सुगंधी तैले, कितने सुगंधी पुष्प माल्य आदि सजा गया था, कितने सुंदर बैणी गुंचा हुआ था, हाथ पैर में कितने उस बनाते ना, क्या क्या सब बने हुए थे सब, और उनको ला करके रथ में बैठाए गए। कई स्त्रियों ने चारों तरफ रथ के चारों तरफ घूम करके तभी भी गाते रोते थे, और इतने में ही अब चलने का समय हो रहा है, जब राज कंस आ पधारे, पधारे सब खड़े हो गए, जो स्त्रियां थीं थोड़ा पांच दो चार हाथ हट गई, हट कर खड़े हो गए, पता नहीं साहब आ गए। तो आते ही सारथी अपने सीट पर जाके बैठ चुका था, स्टीयरिंग पकड़ रहा था चलने के लिए, आदेश को अपेक्षा कर रहा था। युवराज पहुंच करके बोले पीछे डिक्की में चले जा। अब उनको तो मना करने का, क्यों पूछने का साहस नहीं था, चुपचाप अपने ड्रेस के साथ, यूनिफॉर्म के साथ पीछे सीट में चला गया। अब युवराज आगे, वसुदेव जी खड़े हो गए, युवराज आप? हाँ, मैंने सोचा कि अब इतने सारे किया, मेरे आदरणीय छोटी बहन की विदाई मैंने खुद जाकर करके आता हूं, देख कर आता हूं कि उनका कक्ष ठीक से ठीक ठाक है, इनकी और कुछ आवश्यकता है, थोड़ा देख भी तो आऊं और देख लूं, अब आज के दिन तो लास्ट है, तो इसलिए मैं स्वयं जाकर के व्यवस्था दिखाऊंगा और उनको विदा करके आऊंगा। तो बहुत अच्छा है, जब राज स्वयं जाएंगे आपकी छोटी बहन को विदाई देने के लिए, ये तो बड़े गौरव की बात है, जदुकुल का गौरव है, स्वयं जादव कुमार अपने छोटी बहन के लिए विदाई उत्सव में जाएंगे, इससे बढ़िया बात क्या है, आइए हमारे पास बैठिए, सरक गए यहां बैठिए, नहीं नहीं उठ गए ड्राइवर के सीट पर, स्टीयरिंग पकड़ लिए, बोले आप चिंता मत कर, कोई भय की बात नहीं, मेरा भी हेवी लाइसेंस है, अच्छा गाड़ी चलाना आता है, ऐसा मत कर। तो वसुदेव जी कहे मुझे पता है कि युवराज सर्वगुण निपुण है, सब प्रकार सब विद्या में निपुण है, ड्राइविंग अदा तो खूब आता ही होगा, लेकिन ये तुच्छ कर्म आपके लायक नहीं है, ड्राइवर तो है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बहन की विदाई मैं स्वयं ड्राइविंग करके जाऊंगा, वो क्या ड्राइव करेगा, आप बैठिए मैं चलाता हूं ना गाड़ी, कोई दूर थोड़ी जाना है, मथुरा के अंदर ही जाना है, थोड़ी दूर तो है ही, उसमें क्या, ठीक है आपके वसुदेव जानते थे कंस असुर बड़ा दुराग्रही है, मानेगा नहीं, जो सोच लिया वो करेगा, लेकिन आपने नियम के अनुसार थोड़ा प्रार्थना कर दी, सौजन्य के हिसाब से प्रार्थना कर दी, बोले ठीक जो इच्छा आपके। सभी ने देख रहे, स्वयं युवराज ने स्टीयरिंग हाथ, मतलब प्रग्रह घोड़े की रस्सी लगाम अपने हाथ में, एक हाथ में ले ली और दक्षिण हाथ में चाबुक होते होता ना वो ले ली और शुरू कर दी रथ का चलना। लोग साइड हो गए, धीरे मंद गति से रथ आगे बढ़ने लगा, दोनों ओर से लोग और शंख वादन स्वस्ति पाठ और पुष्प सुमन वृष्टि होने लगा भीड़ के अंदर। अभी कुछ फीट आगे बढ़ा है रथ, ज्यादा नहीं कुछ मीटर आगे बढ़ा है, हठात इतने शुभ परिवेश को भेद करते हुए बहुत झंझनाकर बहुत बड़े शब्द प्रतिध्वनि होकर के सुनाई पड़ा, पूरे आकाश से गूंज करके, वो शब्द था रे मूर्ख कंस, तुम जिसको रथ में बैठा कर ले जा रहे हो, तुझे पता नहीं उन्हीं का अष्टम गर्भ तेरा काल है, तेरा काल होगा। अभी तक कंस को रेकार कोई नहीं कह सकता था, फिर रे मूर्ख कंस, घूर करके चारों ओर देखने लगा, कौन किसी का जीव में इतना ताकत है कि मुझे ईश्वर का संबोधन करे, सचमुच पूरे मथुरा में किसी का ताकत नहीं था, ये वाणी तो अशरीरी का था, कोई शरीर वाले का नहीं था, ये तो शून्यवाणी था, देववाणी था, आकाश से गूंज रहा था, वो गूंजता रहा, वो देखा कि सामने कोई नहीं, सारे लोग भी ऊपर की ओर देख रहे हैं, कहां से साउंड आ रहा है, कहां से सारे पब्लिक ऊपर देख रहे, कंस भी ऊपर की ओर देखने लगा, देख करके शब्द सुन करके, आपने पर आक्षेप सुन करके, पूरा आंख उनके जलती हुई अंगार के जैसा लाल लाल हो गया, पूरा क्रोधित हो गया, कांपने लगा क्रोध में, घूर घूर करके आकाश को देखने लगा, कोई दिखाई नहीं पड़े लेकिन शब्द सुनाई पड़ रहा। इति श्रुत्वा, सुनते ही उनको पता था देवता लोग जो भी है झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं उनको झूठ बोलना आता नहीं, सच बोल लेते हैं। तो जैसे सुना कि देववाणी है, आकाश से सुनाई पड़ा, और कोई पब्लिक नहीं कहा, गुस्सा में तो तुरंत देख ही रहा था, तुरंत देखते देखते उनके हाथ से स्टीयरिंग मतलब लगाम का रस्सी छूट गया था, कूद पड़ा स्टीयरिंग के से, ड्राइवर सीट से नीचे उतर गया, हाथ में जो दाहिने हाथ में चाबुक लिया था उसको वहीं फेंक दिया, कूद करके चढ़ गया रथ के ऊपर, चढ़ करके और जो हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ था, अतनी स्नेह में आपने छोटी बहन को विदाई करने के लिए स्वयं रथ चलाने के लिए बाएं हाथ में रथ रस्सी प्रग्रह पकड़ा हुआ था, दक्षिण हाथ में चाबुक लिया था, वही दाहिने हाथ में कोस से खड़ग निकाला, लंबे से रयाल छोड़, और बाएं हाथ में अति सुसज्जित अवगुंठित मुद्रा में अभी विवाहित अवसर पर विदाई उत्सव पर दबकी बैठी थी, उनके जो क्या उस घूंघट होती है उनको यही से उठाकर फेंकी, फेंक करके क्यार ने कितनी पकड़ी उनके केस को, बड़े सुसज्जित फूलों से गुंथी हुई सजी हुई केस को यही से पकड़ ली हाथ में, बिल्कुल पकड़ करके खींचने लगी। अब इस प्रकार दशा से पकड़ी, इमीडिएट टूट करके सवित हक्के बक्के हो गए। वसुदेव जी तुरंत खड़े हो गए, हाँ 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 युवराज क्या कर रहे, लेकिन क्या कौन सुनता है, जैसे कोई बहुत दिन से कोई भूखा बड़े बलशाली विशाल शेर कोई बाघ हो व्याघ्र हो भूखे अवस्था में हो और कोई हिरण उनके सामने आ जाए या कोई गाय के बछड़ा सामने आ जाए, जैसे तुरंत ही उसको मुंह में दबोच ले, ऐसे ही उनको कस करके पकड़ ली, उसके बेणी पकड़ के इसको पकड़ ली, बेचारी माता देवकी ऊंचू कोई चित्कार भी कर नहीं पाई, अवकाश ही नहीं मिला, कुछ साउंड भी बंद, ऐसे पकड़ ली उसको के कहा चूचान कुछ नहीं शब्द, अब तो खड़ग उतार लिया तो वहीं काट देना था गला उसको। अब इतने क्रोध में था, क्रोध के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, हाई हो गया तो पूरा कंप रहा था शरीर उसका, शरीर पसीना से लथपथ हो चुका, स्वेद प्रवाहित होने लगा, और उस स्थिति में सारे लोग दे रहे थे, शंख बजा रहे थे, मंगल ध्वनि कर रहे थे, पुष्प सुमन पूछा अभी क्या, सब के ठप हो गए, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, बाप रे बाप, इतने मंगल उत्सव में ये क्या हत्या उत्सव करने जा रहा है, ये तो मर्डर बिल्कुल तैयार है मार देने के लिए, अभी गला उतार देगा, बताओ। अब वसुदेव जी ने तुरंत पकड़ लिए उनके हाथ को, दो हाथ में कस करके उनके जो खड़ग पकड़ा हुआ हाथ को पकड़े हुए थे, वसुदेव जी का इतना ताकत नहीं कि कंसे के हाथ को पकड़ कर रोक दे, लेकिन समस्या ये था कि कंस को इतने क्रोध हो चुका था, कंप रहा था, हाई ब्लड प्रेशर हो चुका था उसको, तो इसी कारण से वो कंपित अवस्था में वो निशाण नहीं कर पाता, इसीलिए वो पकड़ रहे थे उनके हाथ को, नहीं तो अपने स्थिति में होता तो वसुदेव जैसा कईयों को झाड़ पछाड़ देता, इतने शक्तिशाली था वो। तो इसी आसन्न विपद, बिचारी दयनीय देवकी का आसन्न मृत्यु से कैसे बचा जाए, अभी अभी शादी हुआ, पति का धर्म होता है पत्नी को क्या करना, अभी कैसे करें, तो वसुदेव जी ने अपने प्रयास जारी किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस को गाली देते हुए, भागवत में कहा जाता है, कहते हैं कि पथिक पाणी ग्रहणम कंसाम अभास्या आह अशरीरिबाक अस्याह स्वास अष्टमो गर्भो हंतायंग वहसे अबुधा। तो जो अशरीरी अशरीरी बाक जो वाणी हुआ, इसको शरीर नहीं था, मतलब देवता थे, सुनने वाणी था, क्या वाणी था, कंस ने सुना रस्सी पकड़ते हुए घोड़ा गाड़ी चलाते हुए उनको सुनाई पड़ा, रे अबुध तो मूर्ख बुद्धिमान नहीं हो, क्यों बुद्धिमान नहीं हो बोलते हैं, देवता मानोस बुद्धिमान नहीं हो, इसलिए बोलते हैं कि अरे मूर्ख तुझे पता नहीं, जिसको तूने भारवाही पशु की तरह ढो रहा है गाड़ियों में बैठा करके, तेरे शत्रु के जननी तो वही है, तेरे काल होगा उसी के तो मां हुई है जिसको तू गाड़ियां बैठा कर ले जा रही है, यही उसका मूर्खता है, अज्ञानता है, इसलिए बोलते अबुध मूर्ख। अस्य अष्टम गर्भ, उनके अष्टम गर्भ देवता लोग झूठ नहीं बोलेंगे, पुत्र या पुत्री का नाम नहीं लिए, बोले अष्टम गर्भ। गर्भ कहने का मतलब गर्भ में चाहे पुत्र भी हो सकता है, कन्या भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम गर्भ में उनको दिखाई पड़ेगा कन्या, तो पहले से अगर पुत्र बोल देते तो बोले ये देवता लोग झूठ बोलते हैं, तो इसलिए पहले से उन्होंने अपना विचार कर गर्भ बोल दिया, अष्टम गर्भ कोई भी आ सकता है, बेटा हो बेटी हो वो नहीं जानते, अष्टम गर्भ ये कन्फ्यूज में रख दिए। और तुझे काल, तेरा काल होगा, और कंस तो देवताओं के बारे में जानता था, स्वयं अमरपुरी जीत करके आया था, उनको कभी भरोसा नहीं होता था कि मैं मरूंगा, हंसने लगा खड़े होकर के ठठा करके, मेरा काल मेरा मृत्यु मैं भी मरूंगा, वो मानता था मैं नहीं मर सकता, यद्यपि अमर वर उसको नहीं मिला था, लेकिन ये सोचता था देवताओं को तो अमर कहा जाता ना, देवलोक तो मैं जीत लिया था, यद्यपि जमराज के साथ मेरा मुठभेड़ नहीं हुआ था, लेकिन जमराज तो भैया की देवता तो है, और क्या जब मैं देवराज इंद्र को परास्त करता, जमराज भी एक उसका अंदर का देवता है, तो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं क्या मर सकता, इसलिए वो अपने को मानता था कि मैं नहीं मरूंगा, मैं मेरे काल को अभी ध्वस्त कर दूंगा। तो वसुदेव बोले कुमार ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुना नहीं तुमने, देववाणी हुआ ये मेरा काल है, मेरे काल को अभी ध्वस्त कर देना चाहता हूं मैंने, जब रहेगा ही नहीं, कारण ही नहीं रहेगा तो फिर कार्य क्या होगा, अभी मार दूं खत्म। सुनते ही इमीडिएट एक्शन में उठ गया, यही होता है असुर स्वभाव। कुछ समय पहले इतने अतिशय स्नेह था कि इतने भारी विवाह उत्सव किया कि इतिहास प्रसिद्ध है, इतने भारी दहेज दिया, इतने स्नेहातिशय था कि स्वयं जाकर के गाड़ी चलाने लगा, उनके लायक काम था नहीं, उन्होंने ड्राइवर को हटा करके स्वयं रथ चलाने लगा, इतने स्नेह ममता था, लेकिन केवल उन्हें पता चल गया कि ये मेरा शत्रु के जननी होगा, वो नहीं बिचारी उनका कोई बेटा होगा, वो आठवां संतान होगा, कब होगा क्या होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतने सुनते ही आपने स्वार्थ में मरूंगा और मरने का कारण ये होगा, बस सारे स्नेह ममता सौहार्द्य प्रीति सब डिलीट हो गया, जीरो, एक सेकंड में डिलीट बटन दब गया, खत्म, तुरंत उठकर विपरीत उसी गला काटने के लिए चला। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इति उक्ता स खड़ा पापो भोजानं कुल पानसन, भोजकुल का कुलांगार, इति उक्त यहां कहते हुए सुन करके तुरंत इमीडिएट एक्शन में आया, भगनी हंतु मारब्धम खड़ग पाणी कचे ग्रहित, तुरंत खड़ग पाणी हाथ में खड़ग लेकर कच मतलब अपने केस को पकड़ ली, सजी धजी उनके जो विवाह के तो उनके बणी को पकड़ करके उनको गला काटने के लिए रेडी हो गई। तम जुगुप्सित कर्माणं नुशंसं निरपत्रपम, वसुदेव महाभाग उवाच परिशांतोयन, उनको सांत्वना दे, वसुदेव देखे अब क्या किया जाए, इमीडिएट एक्शन चाहिए इमीडिएट, इसलिए वसुदेव जी को सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में महाभाग शब्द संबोधन किए, वसुदेव महाभाग, क्यों महाभाग बोले, बोले इसलिए महाभाग बोले कि बिल्कुल आंख के सामने आपने, इन फ्रंट आपने, सामने ही आपने, आंख के सामने अभी अभी विवाहिता पत्नी जो आपके दाहिने तरफ ना, लेफ्ट साइड में अभी भी गाड़ी में बैठी हुई है, उसी को आपने सामने मर्डर होने जा रहा है, भरे पब्लिक के अंदर दिन दोपहर में रोड के ऊपर, रेल मेन रोड के ऊपर, और फिर भी उन्होंने चिंतित नहीं है। इतने असमर्थ्य धैर्य, क्षमा, दया, सहनशीलता, ये सब गुण के समुद्र थे वसुदेव, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं हुए, कंस के प्रति भी क्रोधित नहीं हुए। बोले क्रोध करने से मैं क्या कर सकता हूं, उनके साथ मुझे भी मार देगा। वहां क्रोध बोध करने का नहीं, यहां तो बड़े विचार से काम लेना होगा। वो इतने शांत थे, बिल्कुल उनके भ्रूकुंचन नहीं, किसी प्रकार के टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बड़े स्वभाव से बात से कह रहे थे। उनके मुख को लक्ष्य करके सुखदेव गोस्वामी कहते महाभाग वासुदेव, ये महाभाग है। दूसरे कहते महाभाग इसलिए कहे कि उन्होंने शांत और सुस्त क्यों थे, उनके सामने मर्डर होना जा रहे, अभी उनके विवाह था पत्नी का, क्या बात है। बोले इसलिए महाभाग, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने बाजा बजाए थे, दुंदुभि आनक दुंदुभि नाम पढ़ता, नगड़ा बजाए थे, तो तभी उनके माँ ने इस देवताओं के वाद्य को सुन करके, शुभ लक्षण को देख करके उनको कही थी, बेटा ये शुभ लक्षण ये परिचय देता है कि आप एक न एक दिन छत्रपति, मतलब कोई बहुत बड़े भगवत पुरुष के पिता होंगे, भगवत पुरुष के पिता होंगे। ये पहले से जन्म के समय में उनको बोले थे, उनके माँ ने बोली थी, और बाद में उन्होंने इतिहास में सुना भी था। क्या सुना था? कि जो षडगर्भ है, षडगर्भ मरीचि पुत्र जो छह राक्षस है, दैत्य जो अभी सुतल लोक में सोए हैं, उनके उद्धार होगा भगवान की संग प्राप्त करके। तो अभी आकाशवाणी को सुन करके वसुदेव जी ने कन्फर्म हो गए, वाह, आकाशवाणी कहा कि उनके काल आएगा तुझे मारेगा, तो काल तो भगवान ही आएंगे, कंस को दूसरा कोई मार ही नहीं सकता है, देव और उससे अपराजय है, तो वर प्राप्त क्या है, तो भगवान आएंगे। और जन्म की समय माँ ने मुझे बोली थी कि भगवान मेरे पुत्र होंगे, तो भगवान मेरे पुत्र होंगे ये आशा से वो बिल्कुल संतुष्ट हो चुकी थी। और जब आकाशवाणी कहा कि अष्टमो गर्भ, मतलब आठ गर्भ, उसके पहले जो गर्भ, मतलब षडगर्भ शायद आएंगे, उद्धार उनका भी होगा, ये कन्फर्म हो रहा है, उस बात को सुन करके और भी आश्वस्त हो रहे हैं, तो होगा, जब ये सब होगा, अब देवताओं ने बोले ये मरेगा तो देवकी किसे मरेगी, देवकी तो रहेगी, उनके बेटा होंगे, उसको मारेगा, वो तो कन्फर्म है, आकाशवाणी हुआ, कम से कैसे मार सकता उसको, इसलिए निश्चिंत है, वो मार नहीं सकता, किसी हल से मार नहीं सकता। दूसरी महाभाग का अर्थ यह होता है महाभाग्यवान, जो अतिशय भाग्यवान व्यक्ति होते हैं, उनको व्याघ्र सर्प अग्नि आदि दुर्लंघ्य होते हैं, आग उनको जला नहीं सकता, सर्प दंशन नहीं कर सकता, इस सिंह वाले उस हिंसक पशु से मरे नहीं सकते, उनको साइड देके चले जाएंगे, उनको मारेंगे नहीं, इस पर अलंघ्य पुरुष होते हैं, अतिशय भाग्यवान। तो बोले मैं तो शुरू से भाग्यवान हूं, तो ये जो पशु सर्प आदि मेरे से साइड करके चले जाते हैं, मुझे काटते नहीं, दंशते नहीं, तो ये असुर कंस कैसे मुझे बात नहीं मानेगा, उसको मैं तो पटा लूंगा, मना लूंगा मैंने, लेकिन मुझे धैर्य के साथ बात करना होगा, सबर करके उनसे समझाना होगा। तो इसलिए संतोयामास ये शब्द आया है इधर, परिशांतयन, परित सांत्वन, विशेष प्रकार से उनको सांत्वना दू, उनके अंदर सद्बुद्धि जागृत करना होगा मुझे, किसके अंदर ना, जुगुप्सित कर्माण, इतने नीच कर्म कर रहा, जुगुप्सितम निंदित कर्म कर रहा है, निंदित कर्म क्या, जुगुप्सित कर्म क्या है, निंदित कर्म ही है कि एक तो आप भाई हो, वो आपके बहन है, दूसरे स्त्री है, तीसरे विवाह के अवसर पर, चौथे ये सारे पब्लिक के बीच में दिन दोपहर में उनको मारने जा रही, सबसे बड़े निंदित कर्म है, कितने खराब काम है, लोग के सामने शर्म नहीं लगना चाहिए, मारना है तो हटकर कहीं से छिपाकर मारो, लेकर यही से नहीं से मारो, इसलिए जुगुप्सित कर्मम निशंसं, बड़े निष्ठुर, कोई साधारण व्यक्ति ऐसे काम कभी नहीं करेगा। आपने छोटे बहन के ऊपर हथियार उठाना, यह तो अति निष्ठुर कर्म है, इसलिए निशंसम, निरपत्रपम, त्रपम मतलब शरम, बेशरम, सचमुच बेशरम है, शर्म है ही नहीं। अरे कोई लोग सबके सामने, अभी अभी उनका गाड़ी चला रहा था, अभी भी मारने जा रहा है, कैसे बेशरम है। अरे कोई पहले से झगड़ा हो, कुछ हो, उसको लड़ाई झमारो कुछ, अभी अभी तो उनको विदाई कर रहा था, पूरे राजकोष खाली कर दिया उनको भेंट देने में, और अभी मारने जा रहा है, गला कटने जा रहा है, कितने बेशरम है, निलज्ज है। इसलिए सुखदेव उसको गाली देते हैं, नृशंस कुड़ंगार और निलज्ज, ऐसे कह के बोलते हैं कंस को। लेकिन वासुदेव महाभाग, तो इसी स्थिति में वासुदेव क्या बोलते हैं, श्री वासुदेव वाच श्लाघनीय गुण सुरे भवान भोज जशस्कर। ये नीति कहता है किसी को अगर समझाना हो, सांत्वना देना हो, तो चार प्रकार के राजनीति उपाय है। राजनीति चार नीति होता है, साम दान दंड और भेद। इस चार प्रकार नीति से राजाओं ने अपने काम निकालते हैं। साम नीति मतलब साम्यता दे करके, समझा करके। साम नीति में पांच उपाय होता है, परोपकार, गुणगान, लोभ और भेद, अभेद और संबंध। इस प्रकार के पांच उपाय से साम दंड किया जाते हैं, उनको समित कर दिया जाता है। शत्रु को समित कर दो कई प्रकार से, तू तो हमारा मित्र हो, तू हमारा बिरादर हो, हमारे रिलेशन में हो, ऐसे कई प्रकार के उपकार करेंगे, ऐसे करें लोग कई प्रकार देखा कर समित कर देना शत्रु के साम। दान उसमें समित नहीं हुआ, कुछ दे करके कर लो, राजा लोग थोड़ो मानता नहीं, दे दो कुछ, ब्राइब दो, लांच दो, कुछ दे करके दबा दो, खत्म करो काम। साम दान उसमें नहीं होता है, दंड दो, पकड़ कर डांट कर दंड पनिशमेंट देकर ठीक करो, लेकिन इसमें भी नहीं बनता तो अंत में भेद। ये ब्रिटिश लोग ने भेद किए थे भारत बड़े खतरनाक है, भेद वृद्धि सबसे खतरनाक नीति है, भेद नीति। आप दोनों से ही बंटवारा करवा देंगे। ब्रिटिश लोग ने गए 200 साल 250 साल शासन किए, जाते समय में जाते जाते ये बदमाशी करके गए कि हम जिंदगी भर बर्बाद होते रहे, इंडिया पाकिस्तान करके चले गए। पहले नहीं था, पहले भारत एक था, जाते समय उनके विदाई समय में कर दिए बंटवारा, उनको भड़का दिया, उनको भड़का दिया आप उनके साथ में। ये भेद बुद्धि है, दोनों को ऐसे पाठ पढ़ाएंगे वो बिल्कुल बोलेंगे हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे। लो दोनों भाई से अब अलग हो जाए तो खत्म हो गया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बल तो होता है एकता ही बल है ना, नहीं अब अलग हो जाए। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली है, आप दो एक एक करके फट से दो अंगुली में से तोड़ तोड़ देंगे, लेकिन 20-25 माचिस की तिल्ली बंडल करके दो अंगुली क्या पूरा हाथ लगाकर तोड़ नहीं सकते, यूनिटी हो गई। तो इसी प्रकार वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड एंड रूल, ये भेद नीति। तो इसी प्रकार के राजनीति में चार नीति होता है किसी शत्रु को जय करने के लिए। तो यहां तो भेद भेद करना तो कोई है ही नहीं, सामने बिल्कुल खड़ा है मृत्यु रूप कंस है, किससे भेद करेंगे क्या करेंगे, यहां केवल साम और दंड नीति, साम और साम नीति से ही करने के लिए चाहते थे। तो इसलिए शांत होकर उनको समझाने लगे, सबसे पहले समझाए उनका गुण कीर्तन श्लाघनीय गुण, बोले हे साले साहब, साले होंगे ना, क्या होंगे, साले साहब ना, कि हमारे साले जी पूज्य माय डियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ है ना, नहीं आइन के दौरान भाई होंगे ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, साले साहब आपने, आपके सोचिए आप कितने बड़े वीर पुरुष हैं, जितने बड़े बड़े वीराभिमानी हैं, सब आपके प्रशंसा कर रहे हैं, सबका गुणगान कर रहे हैं, इतने श्लाघनीय आप हैं, और आपके वंश भोज वंश बड़े गर्व करता है कि हमारे वंश में कंस जैसे युवराज हैं, कंस जैसे बलवान पुरुष, शक्तिशाली पुरुष है, उनके गौरव है, आप पूरे भोज वंश के गौरव है, स्वयं इतने प्रशंसा के पात्र हो, श्लाघनीय हो, प्रशंसनीय हो, श्लाघनीय सूर्य बड़े बड़े सूर्यों के द्वारा प्रशंसित है, भवान भवान शब्द बोलते हैं कि आप स्वयं आप हैं, भोज जशस्कर भोज वंश को जय कराए, कौन उनको विजय दिए, भोज वंश का जो विजय पताका आपके लिए ही तो, आप उसके कारण है। स कथं भगनी हत्या, ओ आप जैसे वीर पुरुष, इतने प्रशंसनीय पुरुष बन सके गौरव, आप अपने भगिनी को किसे हत्या करेंगे? भगिनी, फिर स्त्री, फिर उद्वाह पर्व या विवाह पर्व पर, ये तो कदाचित आपके लिए उचित नहीं है, ऐसे कैसे करेंगे? पहले ये पॉइंट सब दिखा दिए सामने, इसको सुनकर किसे शांत हो जाए, ये बिल्कुल अचूक पॉइंट दिखाते हैं। आप इसे बड़े पुरुष है, लेकिन मन में बोलते हैं कि भोज वंश के तो एकमात्र कुलांगार आप ही हो, जितने बुर पुरुष खूब गाली देते होंगे, लेकिन क्या इसको वीर कहते हैं, इसको नीति कहते हैं? सारे उल्टे बात, लेकिन कंस कुछ और समझता होगा, दूसरे समझने वाले और समझते होंगे। तो इसी प्रकार कंस को समझाते हुए इस प्रकार उनको प्रेस करके बोले, ये नीति होता है, किससे काम निकालना है तो किसी भी तरह से उनका पैर पकड़ करके उन्हें प्रशंसा करो, वही एक उपाय है काम निकालने का, नहीं तो काम नहीं निकाल सकते। हाँ, ये नीति भगवान क्या, भगवान के बाप भी अपनाए, है ना? नहीं और क्या, ये गुण था तभी तो भगवान ने इनको अपने पिता बनाए। तो इस प्रकार पॉइंट दिए, तो उसको सुन करके मानो कंस ने बोलेगा, क्या कहते हो, मैं प्रशंसनीय हूं, ये हूं, हूं इतने बड़े हूं, हूं तो सही, लेकिन आसन्न मृत्यु जानते हो, उसको टाल दो, छोड़ दो उसको, दुनिया सुना, मैंने माना जाना, देवता लोग ने डिक्लार कर दिए वो मुझे मृत्यु के कारण है, जानते हो उसको, छोड़ दो। मानो कंस ने ये प्रश्न करेगा, तो उसके लिए कहते हैं दुष्यंत को, मृत्युर्जन्म बतांग वीर देहे न सहजायते अद्य वा शब्द अंते वा मृत्युर्वय प्राणिनां ध्रुव। बोलते हैं ये तो नीति है, मृत्युर्जन्म बतांग वीर देहे न सहजायत, हे वीर, वीर मतलब निर्भय पुरुष, आप तो निर्भीक वीर है, आपको क्या पता नहीं कि मृत्यु तो जिस दिन से शरीर जन्म लिया उसी दिन से ही डिसाइड होकर आया है, देहे ना सहज आयते, देह के साथ ही जन्म मृत्यु दोनों आता है। जैसे आप बाजार में कोई भी छोटे से प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई मेडिसिन की बोतल भी लेते हैं, उसमें दो डेट लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। तो हम ये जो प्रोडक्ट से बैठे हुए हैं सब में भी दो डेट प्रिंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट प्रिंटेड है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हम एक डेट को पढ़ते हैं, दूसरे डेट पढ़ते ही नहीं। एक डेट पढ़कर तो क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे, और दूसरे डेट को कभी पढ़ते नहीं, लेकिन ये भी स्टाम्प लगा हुआ है एक्सपायरी डेट, हाँ अवश्य होगा। और केवल इतना नहीं लिखा रहता मेडिसिन बटेगुल, क्या लिखा रहता है, बेस्ट यूज बिफोर एक्सपायरी डेट, ये लिखा रहता ना, कौन इधर डॉक्टर वाले हैं, ऐसे लिखा रहता ना, बेस्ट यूज बिफोर थ्री मंथ्स ऑफ एक्सपायरी, ऐसे कुछ लिखा रहता ना। तो हमारा ये भी लिखा है कि बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा। बुढ़ापा में करेंगे क्या, गवर्नमेंट भी रिजेक्ट कर देता है, प्राइवेट कंपनी भी रिटायर्ड रिजेक्ट कर देता है, सब प्रकार से रिजेक्ट होते किसी काम के, लेकिन हम सिलेक्ट होते हैं भगवान, हम ही अभी भक्त बनेंगे, अभी गीता अभी थोड़ी पढ़ेंगे, जब दांत निकल जाए, आंख चश्मा निकाले, कान को सुनाई ना पड़े, चल भी ना पाए, तभी भगवान अभी आपके भक्ति करने के लिए आ गए, अभी हम सभी से रिजेक्ट हो गए, अब सिलेक्ट करो। वाह रे वाह, ठगने के लिए और दुनिया में कोई नहीं मिले। भगवान बड़े सस्ते हैं ठगने के लिए, खूब ठगते हैं उनको सही में। आप में से कोई ब्राह्मण अगर होंगे जानते होंगे, कभी पूजा पाठ में, पूजा में उपचार की पूजा होता है, भगवान को कोई आवाहन किया जाता है, तो आवाहन करने में आवाहन और स्वागत और वस्त्र पुष्प माल्य भोग नैवेद्य सब दिया जाता है, तो जब कोई उपचार कम पड़ जाता है, जैसे वस्त्र है, ये पुजारी होते हैं, वस्त्र तो भगवान को आवाहन किए, उनके रूप में स्थापना किए, आवाहन संस्थापन सन्निरोधन सकलीकरण ये सब करेंगे, करने के बाद वस्त्र की बात है, वस्त्र तो लाए नहीं भगवान के लिए, कोई बात नहीं, वस्त्र भावे सूत्र गद्यात, वस्त्र नहीं है, वस्त्र का भाव है, एक धागा देते हैं उसके चला लो, भगवान बेचारे चला लेते हैं। अगर आपको कहीं बोला जाता है ओ आप आए बाथरूम जाए, गमछा नहीं, एक धागा देता हूं चला लो, चलाएंगे आपने वस्त्रा भाव है सुतरंग दद्या, तो आपको कोई करे कभी नहीं कर पाएंगे लेकिन भगवान को तो चलेगा। अरे ये क्या, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनके बेटे के शादी के तय हो गया, तय हो गया, तो अभी तो बाजार करना है, मार्केट जाएंगे, मार्केट बड़ा गर्म होता है शादी के सीजन में, सब अपने अपने पिकअप में रहते हैं। अब मैरिज सीजन में जाएंगे मार्केट खरीदने के, सब खरीदने के, बोले कपड़ा खरीदना है और दामाद के लिए सबसे कॉस्टली वाला जो कपड़ा है वो दिखाओ, 2000 वाला, उससे ज्यादा है क्या, 2500, अरे और भी ज्यादा दिखाओ ना, दामाद के लिए एक बार तो देना है उनको, और क्या है, तो 4-5 हजार मीटर वाला बड़े कॉस्टली सूट खरीदेगा, तो सब खरीद के और भी साड़ी जो सब खरीदने की, तो पत्नी बोलेगी अरे वो बोला था पहले ठाकुर जी की पूजा भी करना है, निर्बंध करने की पूजा, अच्छा अच्छा उनके लिए भी, अच्छा उनके लिए भी वस्त्र लेना पड़ेगा ना, कपड़ा वो लिस्ट दिया था ना पंडित जी ने, पूजा भी करना है लिस्ट ना, अच्छा 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 और एक वस्त्र चाहिए भगवान के लिए, ये तो दामाद के लिए हो गया, भगवान के लिए वस्त्र, तो बोला जी दामाद के लिए अगर 5000 मीटर वाला लेते हैं तो दामाद के लिए तो 6000, भगवान के लिए तो 6000-7000 मीटर वाला होना चाहिए, वो निकल, अरे मूर्ख जी पता नहीं भगवान के लिए चाहिए ना, ना भगवान के लिए तो वही तो देखा, तो अरे कितना दिन से दुकान में है आपने ये पता नहीं, कपड़ा बेचते हो भगवान के लिए कौन सा वस्त्र पता नहीं, भगवान के लिए मार्किन वस्त्र होता ना जो 11 रुपए वाला मीटर, ओ ओ भगवान के लिए वस्त्र होता है 11-11.5 रुपया में जो मीटर होता है वो वाला दे दो ठगने के लिए तो और कोई नहीं मिले भगवान, तब जाएंगे वस्त्र ले लिए उससे, तब जाएंगे दुकान में बोले ओ सुपारी लिखा है लेकिन लेना है इतना, तो सुपारी दुकान में जाएंगे बोले ओ पूजा के लिए सुपारी चाहिए दे दो, तो बढ़िया, अरे पूजा के लिए चाहिए ना पूजा सुपारी, तो अरे ये पूजा सुपारी के लिए थोड़ी, उसको खाएंगे थोड़ी हमने, हम पान के साथ खाने के लिए नहीं, किसके लिए चाहिए भगवान के पूजा के लिए चाहिए ना सुपारी, तो पूजा के लिए वो सुपारी चाहिए, नहीं तो सिखाते हैं जो सबसे रटन सड़े हुए रिजेक्टेड साइड में पड़ा वो भगवान के काम के लायक है वो वाला है ना, नहीं हम सभी खरीदते हैं इस प्रकार की चीज सब खरीदते हैं सिलेक्ट करके, तो इस प्रकार। और भगवान के लिए जब नाम आता है सब ठगने का काम आता है। तो अब उन्होंने भगवान को बचाना है, बचाने के लिए दुहाई दे करके उनको कहते हैं कि मृत्यु जन्म बताऊं वीरा, कि जो ये मृत्यु जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं मरना नहीं, जीवराज मरना जीना दोनों तो शरीर के साथ ही आया है, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन डिसाइड हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है एक्सपायरी डेट, देह ना सहजा आयत, इस देह के साथ ही आया मृत्यु, तो उसको तो अपरिहार्य भगवान गीता में कहते हैं जन्मस्य ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं मृत्यु जन्म से तस्मात अपरिहार्य अर्थ, उसको उसको आवहेड नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल टू आवहेड, अपरिहार्य सत्य है, तो आप उसके लिए क्यों करते हैं, मरना तो है आज नहीं तो अब द शताब्द अंते बा, चाहे आज मरो नहीं तो 100 दिन के बाद मरो या 100 साल के बाद, लेकिन मरना तो है ही ना, ये तो है ही है, आज नहीं तो कल, ये तो निश्चित सत्य है आपको मरना है, कि मृत्यु शरीर के साथ आया है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्यों चिंता करते, तब तो मरेंगे तो मरना तो है ही है, तो बिचारी अपने बहन देवकी को इसके लिए क्यों मारेंगे, इतने पाप क्यों करेंगे, तो इसलिए क्यों डरते हैं, मृत्यु तो होना ही है, तो इसलिए वीर सत्य आप तो वीर है तो मृत्यु को भय क्यों करते हैं, और तो मृत्यु तो होना है देह के साथ आया है, और उसको ध्रुवा सत्यं मृत्यु बर प्राणीनांग ध्रुवा, मृत्यु तो निश्चित रूप से होना, किसी भी प्राणी का उसको रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए कहा है कि अब जान मुक्सर पाप करेंगे, मान लिया उनको छोड़ दिए बेचारी, आज शादी का समय है, विदाई का उत्सव है, आज छोड़ दीजिए, लेकिन कंस बोला ठीक है मैं जानता हूं, आप बताते हैं मुझे गीता पढ़ाते हैं कि कि देह के साथ मृत्यु एक्सपायर डेट होना है, मरूंगा ठीक मरूंगा तो मरूंगा, तो देखा जाए मैं तो सोचता था मरूंगा नहीं, अगर आपके बात के अनुसार मरूंगा कोई दिन मरूंगा, मरूंगा तो अभी जो मुझे युवराज के शरीर, ये शरीर तो नहीं मिलेगा ना, अगर ये शरीर को जितने दिन मेरे पास है उसको सुख भोग लाना चाहिए, हो उसको यूज कर लेना चाहिए मुझे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, अभी से क्यों रहो। अभी मेरा वो जो मारने का जो सामने आया आसन्न मृत्यु जो विपद है उसको टालने का किसी का कर्तव्य नहीं होता, आपको पता चल गया ये इसके लिए आपको डेंजर है तो आपको एक्शन लेना चाहिए भाई डेंजर घटाने के लिए। तुम इतने मूर्ख थोड़ी हो, पता चल गया तो कुछ एक्शन नहीं लूंगा। तब बोलते हैं कि जुबरा तू 6 श्लोक बोल करके सिद्धांत की बात बताए कि कैसे मरना निश्चित है। बोला मैं मरना इसी से सुख, बोल फिर दूसरी सिद्धांत बोले सुख की बात आप कहते हैं युवराज, सुख भी तो निश्चित है, सुख आपका हाथ में तो है नहीं, सुख और दुख भी शरीर के साथ ही डिसाइड होकर आया है। अगर आपको इसी शरीर में कितना सुख भोगना है तो निश्चित है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर इसी शरीर से आपका यह सुख नहीं है, दूसरे शरीर में है तो शरीर मरेगा, दूसरे शरीर में सुख अवश्य ही आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकते उसको, वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है सुख भोगना। सुख भोगने का जब विचार करते हैं तो उसके लिए भी नहीं मानना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तब करेंगे। बोला अरे क्या भरोसा मेरे दूसरे शरीर कैसा होगा ना युवराज, ये सिद्धांत की बात है, मरने से पहले दूसरे शरीर डिसाइड हो जाता है, बाद में शरीर छोड़ना पड़ता है, नहीं से कैसे। तो निचड़ों का सा एक कीड़ा के उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि घास के ऊपर कीड़ा चलता है, आप सब देखे होंगे जो इसे इसे चलता है ना रेंगने वाले प्राणी, एक घास के ऊपर दूसरे घास के ऊपर जाता है, पहले दूसरे घास में पैर रखता है फिर पीछे घास को छोड़ता है ना, नहीं जैसे हम चलते हैं, सभी हम लोग चलते हैं दो पैर में, आप अपना चलने को थोड़ा गौर करके देखिए, पहले एक स्टेप डालेंगे सजड़ करके पैर बैठ जाए फिर जाके बैक स्टेप उठाएंगे, ये नियम है ना, पहले बिना रखे पहले स्टेप उठा देते क्या, एक स्टेप आगे न रख करके पहले का स्टेप उठा सकते कोई नहीं जी, पहले ये जम जाए फिर दूसरे पैर उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा ना, वापस आ जाएगा नहीं रहेगा, पैर उठा देखा गड़बड़ है पूरा वापस आ जाएगा बैक नहीं रहेगा, वो जम जाए फिर दूसरा पैर उठेगा, यही नीति है वही नियम है। तो इसलिए हम जो शरीर छोड़ते हैं ये शरीर छोड़ के कौन सा शरीर में जाए वो डिसाइड हो चुका, उसको पहले पकड़ डिसाइड कर लिए फिर ये छोड़ेंगे, ये आपने कर्म के आधार पर आपने अगले जन्म का शरीर तय हो चुका है, भले हमको पता हो ना हो, ये हमारे मूर्खता हमको पता नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर जो प्रकृति के नियम है वो तो बिल्कुल डिसाइड कर रखा है, चाहे कुत्ते बिल्ली चूहा शुकर कुकर क्या बनेंगे बिल्कुल डिसाइड हो चुका है हमारे लिए, हम जैसे कर्म किए हैं जैसे स्वभाव है इसी के अनुरूप बिल्कुल डिसाइडेड बॉडी बनकर के रेडी है आपके लिए, आप छोड़ते ही सर क्रिया कर्म होने के बाद उसी में प्रवेश करेंगे, स्वागत उसी में ही होगा। बोले पहले से डिसाइड हो चुका है आपके लिए, घर पहले फिक्स हो जाता है, हम जो कोई क्वार्टर में रहते हैं रेंटेड, आपको घर छोड़ने के लिए कहा गया तो आप इसे छोड़ देंगे बिना कोई घर तय करके, पहले घर एक डिसाइड करेंगे तय करेंगे सारी व्यवस्था तब जाकर छोड़ेंगे, बोले टाइम दो ऐसे कैसे आज छोड़ देंगे, मुझे टाइम दो महीना मैं पहले घर डिसाइड करूंगा शिफ्ट करूंगा तब जाके छोड़ूंगा, ये होता ना, तो यही है घर है, ये घर को छोड़ना हो तो दूसरे घर को तय करके उनके लेखा जोखा रेंट फेंट पक्का करके एग्रीमेंट साइन कर तब जाकर निकलेंगे घर से, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो इस नीति के बाद उन्होंने समझाए, लेकिन जब असुर और फिर मौत के बाद सुन चुका है हाई ब्लड प्रेशर में है इतने गुस्सा में काहे को नीति काम करेगा, ये नीति नियम तो सब ऊपर ऊपर से जा रहा था साइड से पास कर रहा था कुछ काम नहीं कर रहा था, क्यों निरपत्र पर निर्लज्ज है, शर्म तो है ही नहीं, नृशंस है, जुगुप्सितम कुछ भी खराब काम करने के लिए तैयार, कुछ भी पाप करने के लिए एक स्टेप पीछे नहीं हटेगा, सोचेगा नहीं, हु केयर्स, पाप काम करने के लिए बिल्कुल चिंता नहीं भय नहीं डर नहीं, इतने निर्लज्ज है बेशर्म है महानुशंस है। तो ये नीति वाक्य उसको काम करेगा, उसको भक्ति शास्त्री पढ़ाएंगे तभी, ये कुछ नहीं काम किया। वसुदेव ने बोले ये मेरा नीति फीति सब बेकार, अब क्या करूं, तो मान नहीं रहेगा, ये बिल्कुल कांप रहा है, मेरे हाथ को हटा रहा है, गला काटने के लिए उद्यत हो रहा है। अब वसुदेव ने बोले ये बुद्धि वृत्ति काम नहीं करेगा, अब तो कुछ आसन्न बुद्धि लगाना पड़ेगा क्या ना। अभी देववाणी हुआ कि आठवें संतान उसको मारेगा, अब क्या पता, देववाणी तो ये भी कहा आठवें संतान उसको मारेगा, अरे आठवां संतान होगा कि नहीं क्या पता, अगर होगा सत्यवाणी हुआ तो मरेगा, तो फिर वो किसे मार सकता देवकी को, तो मार ही नहीं सकता, तो किसी भी हालत में मुझे अभी देवकी को बचा लेना चाहिए, तो ये बुद्धि करना चाहिए, नीति भीति काम नहीं करेगा इधर, तो इसलिए आसन्न बुद्धि लगाकर महाभाग वासुदेव ने तुरंत अपने बुद्धि बदला दी, अपने कोर्स चेंज किए, सब्जेक्ट चेंज किए, तुरंत चेंज करके बताया कि जीवराज एक बात कहूं, बोलो, आपको आपके छोटी बहन बिचारी देवकी से तो कोई भय नहीं ना, ना उनसे क्या भय, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसे कुछ नहीं, सुना नहीं उनका आठवां गर्भ मेरा, उसका आठवां पुत्र गर्भ उनका काल है ना, ना जब उनका आठवां गर्भ है उसी को आपको मानते हैं विपद करके, तो मैं आपके सामने एग्रीमेंट साइन करता हूं, गारंटी देता हूं, आठ क्या, एक दो तीन चार नंबर वन से जो भी उनके संतान होंगे एक एक करके सब आपको दे दूंगा। वसुदेव जी ने बड़े होशियार से कहते हैं, बोले जी आठवां गर्भ आपका काल है, आठवां तक जितने संतान एक से होंगे सारे मैं आपको देने के लिए प्रतिश्रुतिबद्ध होता हूं, समझे ना क्या कहे वसुदेव जी ने, क्या कहे, आठवां को छोड़ करके उनको नहीं दूंगा, ना 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 आठवें तक, बड़े बुद्धि से बात कहते हैं उन्होंने बचा करे आपने, बोले उसको कैसे दे दूंगा, तो मारेगा तुझे उसको तो किसी हालत में बचा के रखूंगा, मैंने जो भी करना पड़े करना पड़े उसको तो बचा के रखूंगा, लेकिन सारे पुत्र जो होंगे आठवें तक सारे मैं आपको दे दूंगा, कौन सा तो मूर्ख हाई ब्लड प्रेशर में था वो क्या समझा, बोला अच्छा सारे दे दोगे, कंस का तो एक बात था वो मानता था, पूरे मथुरा नगरी में वसुदेव जी बड़े पूज्य बड़े जाने माने व्यक्ति थे, अपने वचन के लिए, अपने वचन के बड़े पक्के हैं, जो बोलते सो करते, बड़े प्रशंसनीय श्लाघनीय व्यक्ति थे, कंस को भी पता था कि वसुदेव जी ऐसे के व्यक्ति नहीं है, वो तो दिव्य पुरुष है, जो कहते हैं अवश्य सच कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या आप मुझे वचन देते हो, ना वचन देता हूं, लाओ स्टाम्प पेपर अभी साइन करते हैं, तो एग्रीमेंट की जन्म होते ही मैं आपको पुत्र संतान आपको सौंप दूंगा, तो आप रखो मारो आपके ऊपर है, दब किसी को, तो ये बुद्धि में आ गया, इस प्रकार के बाद काम में आता है, नीति भीति काम में नहीं आता, उपस्थित बुद्धि काम करे, प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा, कभी कभी बहुत शास्त्र बातें बहुत नीति शास्त्र के उदाहरण वेद की ऋचाएं ये कुछ नहीं काम करेगा, छोटी सी बात प्रैक्टिकल बोल दो इमीडिएट काम कर जाएगा, तो उपस्थिति बुद्धि कहते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया, बोले ये सब काम नहीं करेगा, उपस्थिति बुद्धि ये कहो तो मान गया, पक्का ना पक्का, तब उतर गया रथ से। अब जब उन्होंने मारने के लिए तैयार हो रहा था, टाइम हो गया नहीं, जब वो मारने के लिए रथ में पूरी भरी रास्ता पर इतने भीड़ के अंदर तैयार हो रहा था, पूरे मथुरा के जनपद के सारे बड़े बूढ़े युवक सब देख रहे थे, जदवंशी लोग, किसी को सहन नहीं हो रहा था, अरे ये कुड़ांगर कर क्या रहा है, विवाह के उत्सव विदाई उत्सव रथ में बैठे हुए अपने भगिनी को मारने जा रहा है, गला काटने जा रहा है, अरे रुको रुको कंस ये क्या कर रहे हैं, जीवराज नरेश घूम कर देखा कौन ऐसे कर रहे हैं, मुझे सुना नहीं, बोले जीवराज एक बात कहें ना, क्या ना, आप तो माने देवता लोग आपको कहे मरने के लिए, देवता लोग कब से आपके मित्र हो गए, वो तो आपके चीर शत्रु, हाँ मेरे शत्रु हैं, वो चाहते हैं अपना मृत्यु ना, हाँ वो तो मेरे मृत्यु चाहते हैं, जो अपना मृत्यु चाहता होगा आपका, कोई मारने वाला आपको होगा तो उसे छिपा के रखेगा पलेगा ना, उसको बताकर उसको मरवा देगा, कहिए आप किसी का डेड अगेंस्ट हो तो आपको पता चल गया ये उसको नाश करने वाला है तो उसको बचा करके छिपा कर रखेंगे ना, उसको बता देंगे नष्ट करवा देंगे, बताइए छिपा कर रखेंगे ना, बोले देवता लोग कब से आपके मित्र हो गए, आपको बता देंगे कि सर ये मरने वाला है उसको अभी से मार दो, कहेंगे आपको ये तो छिपा कर रखेंगे पता चलेगा, तो तो कौन सा भी सोचा बात तो सही, देवता लोग तुम्हारा डेड अगेंस्ट है, वो मुझे कहते डिक्लेयर कर दे। लेकिन इतने बुद्धि काम नहीं करता, सोचा तो सही एक मिनट। बोले महाराज आपने क्यों चाहते हैं उनको मारने के लिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नारे जो भी कहे देवता लोग को बाय मिस्टेक बोल दिए होंगे, लेकिन देवता लोग को झूठ नहीं बोलते ये तो मैं मानता हूं, इसलिए मुझे मार देना चाहिए। बोले झूठ नहीं बोलते हैं जीवराज, अगर आप मानते हैं देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं और वो देवता लोग कहे कि आपको मारेगा तो सच होगा आपको मारेगा, तो फिर आपको किसे मार, आप किसे मार सकते हैं उसको है? मैं नहीं किसे मार सकता हूं, मैं मार सकता हूं। आप गुस्से में उसका दुर्बुद्धि क्या करे। लेकिन अब जब वसुदेव जी ने एग्रीमेंट साइन किए तब उनको समझ में आया, बोला चलो काहे को मारूं, शर्म लगेगा, लोग सब इतने करते हैं, मैं इतने बड़े प्रशंसनीय पुरुष हूं, जीवराज हूं, जैसे अभी तक कोई बाकी था उनके वे शर्म में होने में, तो ठीक है मैं नहीं करता हूं, और छोड़ करके रथ से उतर गया। आप विदाई उत्सव भाड़ में जाए, कोई वसुदेव देवकी से कोई स्नेह ममता नहीं रहा, आपने घर की ओर चलने लगा। जब ये रथ में तलवार पकड़ करके चोटी पकड़ करके गला काटने जा रहा था, पूरे मथुरा में हाई स्पीड में खबर मैसेज फैल गया, ऐसा बिल्कुल बड़ी बाजार के ऊपर मर्डर होने जा रहा है। तो ये खबर तक कुछ युवक जादव ने दौड़ करके आ करके राजधानी में महाराज उग्रसेन को भी दिए। उग्रसेन देवक को भी धड़ बढ़ोकर उठे, उठ करके आपने रथ में कुछ सैन्य सिपाही लेकर के खड़ग लेकर दौड़ पड़े थे उन्होंने, लेकिन गेट पर आ चुके थे। इतने में ही वो खबर आया कि अब तो वापस आ रहा था, वहीं पर खड़े थे, गुस्से में थे, कांप रहे थे, क्या देवकी के ऊपर खड़ग उठाया मारने के लिए चला, अरे मार ही देता, कैसे वसुदेव जी ने कैसे तैसे बचाए, आप बोलते मारी खड़ग उठाया। वो इतने में ही कंस वापस आ रहा था, वसुदेव जी द्वार पर खड़े थे, राज द्वार पर देखे और कोई सैनिक उनके साथ में, बड़ी गार्ड थे उनके साथ में अंगरखी, उनको देखते ही गुस्से में कंप गए, उच्च स्वर से चिल्लाकर बोले अरे मूर्ख, मैंने सुना है तू देवकी के ऊपर अस्त्र उठाया, कांपते सुर से चिल्ला करके उनको देखते हुए बोले। तो कंस ने उनके ओर हुंकार करके, कोई सम्मान नहीं, कोई हिचक नहीं अपने पिता की ओर, तुरंत बोल दिया, ये भी तो सुन लिया ना आपने कि उनका अष्टम गर्भ मेरा मृत काल होगा, ये भी सुना ना नहीं, केवल मैं हाथ उठा ही सुन लिया। और भी बहुत सारे जादव सैनिक मेरे ऊपर आंदोलन करते थे मुझे मारने के लिए, पता है ना नहीं इस बात को। नारे मूर्ख, तू क्या समझते तू मरोगे नहीं, तू क्या अमर है, तू अमर तो नहीं है, मरोगे तो अवश्य है, मृत्यु को कैसे टाल सकते हो, अभी तक तो रोष लिए बैठे हो कि वो लोग तुझे विरोध किए, अरे उनके अंदर तक कम से कम मनुष्य तो अभी तक है, वो पुरस्कार के पात्र है, तुझे इस प्रकार के कर्म को ग्लानि नहीं है, इस प्रकार नीच कर्म किया, अपने छोटी बहन को विवाह अवसर पर खड़ग हथियार उठाया मारने के लिए, तुझे कोई ग्लानि नहीं है उसके ऊपर, उनके ऊपर रोष कर रहा है। लेकिन कंस उनके मुंह में जवाब दिया, मैंने सुनता किसी का बात, आपने मारने वाला को मैं तुरंत मार दूंगा, उनके सहायक संरक्षक को भी मार दूंगा, बोल करके चल दिया। महाराज उग्रसेन करेंगे क्या, आपने पुत्र की ओर कुल देखते ही रहे, हाथ मलते ही रह गए, बोले हाय हाय रे कुड़ांगार पुत्र, तो कैसा जन्म हुआ मेरा ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, बड़े दुखी हो गए। मंत्री सेनापति लोग उनको लेकर के उनके बेडरूम में ले गए, वो भी बड़े दुखी हो गए, टेंशन में आ गए। कंस चला गया, अब जाकर के तुरंत, हाई टेंशन में था, जाकर के तुरंत घर में पहुंचा तो उनके दो रानी ने दौड़कर कहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सारे बताया, आकाशवाणी के बाद बताया। बोला तो आप छोड़ दिया उनको, वो भी ऐसे ही है ये भी असुर को असुरनी है आप कैसे छोड़ दिया उनको, तो समझा दिया एग्रीमेंट साइन के छोड़ दिया उसको, कुछ तो एक्शन नारे सबका सामने ना, अच्छा अच्छा अच्छा, सबके सामने नहीं मानना चाहिए, बाद में तो मार दो ना। बोला ऐसे मारने से नहीं, अब तो साइन हुए, उनसे तो मेरा कोई डर नहीं है, उनके पुत्र से, तो वो पुत्र तो दे देगा, पुत्र को मारेंगे। अभी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसे आप एक्शन कीजिए जे कि पूरे वसुदेव जी के घर में देवकी को पता ना चले कि आपका मन में भी कुछ उनके प्रति द्वेष है। बिल्कुल जैसे पहले ही स्वभाव था ऐसे ही करो, बल्कि उनको बताओ कि मैं गुस्सा में आकर के ऐसे कर दिया, बहुत मैं अपने आप को रिपेंट कर रहा हूँ, सोचना कर रहा हूँ, शर्म के कारण आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसे संवाद दो उनको। और बिल्कुल खबर रखो, क्यों अभी आपके बहन के ऊपर प्रेम है क्या? नहीं नहीं, प्रेम नहीं है। अगर वसुदेव देवकी को लेकर कहीं नगर से भाग गया तो मुझे किसे पता चलेगा कहाँ से लड़का हो मारेगा? अभी तो यहीं पे हमारा कंट्रोल में है, इसलिए एक एक लड़का को पकड़ मारना है उसको, अगर बाहर चला गया तो। बोले क्या तीक्ष्ण बुद्धि है स्वामी के, तुरंत तैयार हो गए, रेडी हो गए से अपने भेष पोषाव लेकर के। और वसुदेव देवकी तो अपने घर में भवन में पहुंच चुके थे, किसी को सबको पता चल गया था, कोई मीडिया छापने वाला जरूरत नहीं था, सारे प्रकट देखे थे घटना क्या हो गया। और उसी दिन से, उसी घटना से पूरे मथुरा जनपद में जितने बड़े बड़े अच्छे लोग थे, अच्छे ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी समझदार लोग थे, सभी का मन में कंस के प्रति जो प्रशंसा जो सद्भावना था सारे लोप हो गया, सारे उसको गाली देने लगे, हाँ है कितने कुछित व्यक्ति है, कैसा है, सब उनके प्रति इसी भावना देखने लगे। और वसुदेव देवकी तो अपने घर में जाकर पहुंचे, पहुंच कर क्या उनके विदाया वंदापना होगा, आरती उतारेंगे, कुछ करेंगे, ये हाई टेंशन से कैसे मर मर के बच्चे आए, एग्रीमेंट साइन करके वो जाने, सभी जाने, और क्या दहेज देखेंगे, नए पलंग में रहेंगे, ये सब ये गिफ्ट में आया, क्या कोई देखेंगे कुछ? अभी अभी डेथ के बचकर आया, गला काटते काटते बचकर आया, अब इतना अलंकार गिफ्ट में आया है, ये पैकेट आया है, ये देखेंगे अपने, भाड़ में जाने तो मर रहा था, अब ये सब क्या होगा। बड़े दुख में जा करके अपने बेडरूम में गए होंगे, और इस प्रकार तैयारी, और आगे चल करके फिर क्या कंस के प्रयत्न, वो काल सुनेंगे। हरे कृष्ण।
लेकिन ऐसे क्या